सृष्टि होने के पहले ईश्वर अपनी एकता में था और वह स्वयं के साथ अकथनीय वार्तालाप करता था और अपने सार तत्व के वैभव के साथ चिंतन करता था और उसकी प्रशंसा की। यह सादगी ही प्रेम है जो उसके सार में सारों का सार है और वह सभी गुणों से परे था। अपनी पूर्ण एकाकीकता में ईश्वर प्रेम से प्रकाशित था और इस प्रकाश से उसके गुणों और नामों की अनेकता प्रकट हुई। फिर अपने परमानंद को देखने के लिए उसने अजल से अपने स्वयं की यानी अपने गुणों और नामों की एक तस्वीर बनाई। यह आदम था। इस प्रकार परमात्मा अपने देवत्व में आदम में मानवता का ईश्वर हो गया। मंसूर ने ईश्वर के मनुष्य के संबंध को देवत्व का मानव की आत्मा से निषेचन माना। हिंदू शब्दावली में पुरुष के द्वारा बुद्धि का प्रकाशवान होना, दैवीय आत्मा वहां प्रकाश उत्पन्न करती है जहां मैं वह हो जाता हूं जिससे मैं प्रेम करता हूं और जिससे मैं प्रेम करता हूं वह मेरा हो जाता है। हम दो आत्माएं हैं जो एक ही शरीर में सन्निहित हैं। मुझे देखना ईश्वर को देखना है, ईश्वर को देखना मुझे देखना है। यह स्पष्ट है कि अपनी घोषणा कि मैं ईश्वर हूं के बावजूद मंसूर एक गंभीर एकेश्वरवादी नहीं था, क्योंकि उसके अनुसार संपूर्ण और ईश्वर की छवि के बीच अभी भी स्तर का या क्षमता का अंतर था। कुशारी ने सूफी विचारधारा में मध्यवर्ती घटकों के द्वारा सृष्टि के नौ प्लेटोवादी विचार को जोड़ा और इब्न सीना ने अंतिम सत्यता की अवधारणा को शाश्वत सौंदर्य के रूप में जोड़ा जो अपनी छवि ब्रह्मांड के दर्पण में देख रहा था। इस प्रकार यह विचार उत्पन्न हुआ कि ईश्वर भावातीत और सर्वव्यापी है और सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण से यह बात मानी गई कि जो भी कुछ अन्य है वह माँ है और अलग होने की भावना अज्ञान के कारण है जो ज्ञान से ही खत्म हो सकता है। इस विचारधारा के तीन बुनियादी विचार थे। प्रथम, चरम सत्यता, ऐसा ज्ञान है जो चेतना के भावातीत स्थिति के जरिए प्राप्त होता है। द्वितीय, चरम सत्यता अवैयक्तिक है और तृतीय, चरम सत्यता एक है। रहस्यवादी चिंतन की कई विचारधाराएं थीं, किंतु दो विशेष महत्व की हैं जो प्रकाश को चरम सत्य मानते थे और वे जो उसे विचार के रूप में मानते थे। पहले के प्रमुख प्रवक्ता थे शेख सहाबुद्दीन सुरहावर्दी और दूसरे के प्रवक्ता थे इब्न अल अरबी और उसके व्याख्याकार पृष्ठ संख्या 74 अब्दुल करीम जिली। सहाबुद्दीन ने अपना अध्ययन मरघा में प्रारंभ किया और फिर वे अलेप्पे चले गए। विचारों की स्वतंत्रता के कारण वे अधिकारियों की आंख में खटकने लगे। उस पर काजी ने दोषारोपण किया और उसे सलादीन के आदेश से मृत्युदंड दे दिया गया। उन्होंने हिकमत अल इशराक पर कई किताबें लिखी। विचारों की श्रृंखला उन्हें प्लोटिनर मानी और जरथुस्र से जोड़ती हैं। उनके दर्शन में संपूर्ण अस्तित्व का अंतिम सिद्धांत प्रकाश है जिसका अनिवार्य स्वभाव है शाश्वत प्रकाश। यह प्रकाश स्वयं अस्तित्व वाला है, स्वयं प्रकट होता है और वर्णनातीत है। प्रकाश न होना उसका निषेध है और उसके प्रकटीकरण के लिए जरूरी है प्रकाश न होना। भारतीय माया और समायम अस्तित्वहीन है। प्रकाश अस्तित्व का स्रोत है। उसमें दो प्रकार के प्रकाश होते हैं। पहला अमूर्त जो निराकार और सीमातीत होता है और वह किसी अन्य वस्तु का गुण नहीं होता। चेतना या ज्ञान उसका सार है। यह सार्वभौमिक बुद्धि और उसके सुदूर प्रतिबिंब व्यक्तिगत बुद्धि का सिद्धांत है। दूसरे अकस्मात जिसका रूप होता है और जो गुण हो सकता है वह अमूर्त प्रकाश का प्रतिबिंब होता है और उस पर निर्भर होता है। प्रकाश न होना संपूर्ण पदार्थ का सिद्धांत है और उसकी दो प्रकार की भौतिक चीजें होती हैं, एक अस्पष्ट पदार्थ या अणु जो अंतरिक्ष के परे होता है, और दो वे रूप जो आवश्यक रूप से अंतरिक्ष में होते हैं। इन दोनों से सभी भौतिक वस्तुएं पैदा होती हैं। अमूर्त प्रकाश से भौतिक वस्तुएं एक संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ के चक्रों की निरंतर श्रृंखला होती है, जो मूल प्रकाश पर निर्भर होता है। जो स्रोत के निकट होते हैं उन्हें दूर रहने वालों की तुलना में ज्यादा प्रकाश प्राप्त होता है, और सभी लोग प्रेम के गहन आवेग और शाश्वत आकर्षण से प्रकाश के मूल स्रोत की ओर जाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड प्रेम में रहता है और उससे ही चलायमान होता है। मानव आत्मा उस अमूर्त प्रकाश का सर्वोच्च आवास स्थल होता है, जो मनुष्य देह में पशु की आत्मा के माध्यम के जरिए प्रवेश करता है, जो प्रकाश नहीं और प्रकाश के बीच में कहीं होता है। मानव आत्मा ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की कामना करती है, जिससे कि वह आकार या प्रकाश नहीं की दुनिया से पूरी तरह आजाद हो सके। यह ज्ञान और कर्म के जरिए प्राप्त होता है। मनुष्य की आत्मा की 5 बाहरी और 5 आंतरिक इंद्रियां होती हैं, जो प्रकाश की शक्ति की चीजें हैं, और उसमें वृद्धि आत्मसात करने पचाने की क्षमता होती है। जो प्रकाश नहीं की शक्ति की चीजें हैं, वे मिलकर जीव की एकता का निर्माण करती हैं। वे प्रबुद्धता के रूप में अमूर्त प्रकाश से जुड़ी होती हैं। पृष्ठ संख्या 75। किंतु निष्क्रिय पुरुष अंधे किंतु सक्रिय मन से जुड़ा होता है। मानव मन के 3 तत्व होते हैं, सत्व, रज, तम। तीनों के समन्वय से ज्ञान मिलता है, जो सर्वोच्च सद्गुण है। व्यक्तिगत आत्मा हमेशा प्रगतिशील है। वह पूर्ण प्रकाश और अंतिम विलय के लिए अनथक रूप से प्रयास करती है। मृत्यु उसके प्रयासों को समाप्त करती नहीं करती। जब एक जीवन में उसके द्वारा अपनाया भौतिक तंत्र समाप्त हो जाता है, तो वह दूसरी देह धारण कर लेती है, और वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तब तक ऊंची और ऊंची उठती जाती है, जब तक कि वह अपने गंतव्य को नहीं पहुंच जाती, जो चरम समाप्ति की स्थिति है। जब सभी आत्माएं एक ही स्रोत की ओर यात्रा करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, तब ब्रह्मांड विलुप्त हो जाता है, और फिर पहले के समान सृष्टि का दूसरा चक्र शुरू हो जाता है, और इस प्रकार विलीनीकरण और विकास का चक्र जारी रहता है। मनुष्य का आध्यात्मिक लक्ष्य प्रबोधन है। उसे प्राप्त करने के लिए उसे संत वृत्ति अपनाना होता है। मार्ग में विश्राम स्थल होते हैं, जो 5 प्रकार के माने जाते हैं। पहला चरण मैं का है, जिसमें व्यक्तित्व और स्वार्थ की भावना होती है। दूसरा है तुम नहीं हो, स्वयं में पूर्ण रूप से आत्मसात होना। तीसरा है मैं नहीं हूँ, दूसरे की प्रतिक्रिया। चौथा है तुम हो, ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण। और 5वां मैं नहीं हूँ और तुम नहीं हो, अंतरिक्षीय चेतना, कर्ता और कर्म के अंतर की समाप्ति। इब्न अल अरबी सूफी दर्शन का सबसे महान विद्वान है। वह प्रकृति और मनुष्य दोनों को ऐसा दर्पण मानता था जो स्वयं ईश्वर का प्रतिबिंब देता था। सृष्टि के हर अणु में ईश्वर स्वयं विद्यमान है। वह सभी बोधगम्य वस्तु में प्रकट होता है और हर प्रज्ञा में से छुपा होता है। सिर्फ उन लोगों की प्रज्ञा से वह नहीं छुपा होता जो कहते हैं कि ब्रह्मांड ईश्वर का रूप है। वैसे ही ईश्वर का संबंध उस वस्तु से वैसा ही होता है जैसा कि आत्मा का शरीर से होता है। ईश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध के बारे में वह कहता है, मनुष्य ईश्वर का रूप है और ईश्वर मनुष्य की आत्मा है। मनुष्यों के माध्यम से ईश्वर उन चीजों को देखता है जिन्हें उसने रचा है। मनुष्य हर गुणों का सार है जो वह ईश्वर को प्रदान करता है। जब वह ईश्वर का चिंतन करता है तो वह स्वयं का चिंतन करता है, और ईश्वर जब मनुष्य का चिंतन करता है तो वह अपना चिंतन करता है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य था, क्योंकि देह के रहते ईश्वर के साथ पूर्ण एकाकार संभव नहीं है। ज्ञान श्रद्धा और चिंतन से प्राप्त होता है। पृष्ठ संख्या 76, जिसमें मानवीय विवेक अपने असंबद्ध ज्ञान से छुटकारा पा जाता है। ज्ञान का अंत भावातीत चेतना है, जिसमें शाश्वत की उपस्थिति में क्षणभंगुर लुप्त हो जाता है। इस सर्वेश्वरवाद का व्यवहारिक निष्कर्ष यह था कि ईश्वर की आराधना असंख्य प्रकार से की जा सकती है और सभी धर्मों में सत्य है, क्योंकि यदि सभी चीजें दैवीय तत्व का प्रगटीकरण है तो ईश्वर की आराधना किसी सितारे या किसी बछड़े या किसी अन्य चीज की भी की जा सकती है, और इसलिए धर्मों में पूर्ण सहिष्णुता होनी चाहिए। वह कहता है, हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है, जिस पर वह विश्वास करता है उसका ईश्वर उसी की वस्तु है और उसकी प्रशंसा करने में वह स्वयं अपनी प्रशंसा करता है। फलस्वरूप वह अन्य लोगों के धर्मों पर दोषारोपण करता है। यदि वह न्यायपूर्ण होता तो वह ऐसा नहीं करता, किंतु उसकी नापसंदगी उसके अज्ञान पर आधारित है। यदि उसे पता होता कि जुनैद ने कहा है कि पानी वही रंग धारण कर लेता है जिस पात्र में वह होता है, तो वह दूसरों के धर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि वह हर रूप और हर धर्म में ईश्वर को देखता। इब्न अल अरबी के करीब 150 बाद अब्दुल करीम अल जीली हुए। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती विद्वान की कृति फुतुहात अल मक्किया पर एक टीका लिखी और सूफीवाद पर एक स्वतंत्र कृति परिपूर्ण मनुष्य लिखा। बौद्धिक क्षमता या दार्शनिक दृष्टि से जीली अरबी के समकक्ष नहीं थे। उनकी कृति में सभी प्रकार के गुप्त विषयों के विषयांतर से भरी पड़ी है और उनका दर्शन धैर्य से उसी प्रकार खंड खंड एकत्र किया जा सकता है जैसा निकोलसन और इकबाल ने किया। उनके विवरणों के आधार पर उनकी पद्धति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। एक ही परमेश्वर है जो दो रूपों में मौजूद है, संपूर्ण या निर्गुण और सगुण। संपूर्ण को जाना नहीं जा सकता क्योंकि वह संबंधों से परे है और न होने और न होने के परे है, यानी विरोधाभासों का योग है। पूर्ण, जिसमें कोई गुण और संबंध नहीं होते, वह अंधकार से ढका होता है। सगुणता में उसका पहला कदम तब होता है जब बिना बाहरी रूप दिखते हुए वह अंधकार से उत्पन्न होता है, तब भी वह नाम और गुणों से मुक्त रहता है और एकता में अनेकता है। इस क्षमता का बाहरी पहलू है अमूर्त एकता। जब परमेश्वर एकता के रूप में अपने बारे में सचेत होता है, दूसरा कदम तब होता है जब अमूर्त एकता अपने को वह और मैं के दो पहलुओं में प्रकट करती है। पहली या आंतरिक स्थिति में परमेश्वर अपने बारे में अनेक गुणों को नकारने के प्रति चेतन होता है और दूसरी या बाहरी स्थिति में पृष्ठ संख्या 77 वह इनके सत्य के रूप में चेतन होता है। अंतिम कदम परम को अंधकार में से प्रकाश में, अचेतन से चेतना में, निर्गुण से सगुण में और संपूर्ण अस्तित्व की श्रृंखला को अपनी परिधि में समेटे विशेष गुणों के साथ देवत्व के क्षेत्र में लाता है। अंत में परम समग्र चिंतन का विषय और लक्ष्य हो जाता है और इस प्रकार विशाल चमत्कार बन जाता है। देवत्व परम का उच्चतम प्रकटीकरण है। यह परमात्मा के व्यक्तिकरणों के सार का एक नाम है। सभी गुणों के सार के लिए यह दया और स्वामित्व के दो पहलुओं में प्रकट होता है। दया में यह रचयिता से रचित चीजों के रिश्ते में होता है और स्वामित्व में यह रचित चीजों के संरक्षक और चलाने वाले के रूप में उनके क्रम में होता है। देवत्व अपने नामों और गुणों के जरिए जानी जाती है। ये नाम उसके सार सौंदर्य, वैभव और पूर्णता को लेकर है। मुख्य गुण है जीवन, ज्ञान, इच्छा शक्ति, वाचा, श्रवण और देखना। ब्रह्मांड दैवी विचार यानी परम को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रतिरूप है। ब्रह्मांड वर्फ ईश्वर जल है। ईश्वर अंतरिक्ष का सार है। चेतन विश्व विचार चिंतन या स्वप्न है, किंतु माया नहीं है। यह ऐसा सत्य है जो परिपूर्ण मनुष्य की अंतरिक्षीय चेतना में जो सत्यता के सभी गुणों को एक साथ धारण करती है और उसके जरिए खुद को प्रस्तुत करती है, उसके भीतर जो चीज है वह गुणों का संग्रह है, वह विचारों से बना है और उसका अन्य कोई अस्तित्व नहीं होता। जीली के मीमांसात्मक मिथक में विचारों का विचार एक श्वेत कोश में था, जिसमें ईश्वर प्राणियों की रचना करने से के पहले रहता था। उसने परिपूर्णता की नजर से उन्हें देखा और वह पानी बन गया, और फिर प्रताप की दृष्टि से उसे देखा और वह लहरें बन गया, और उसके कुल तत्वों से 7 पृथ्वियां बन गई, और उसके सूक्ष्म तत्वों से 7 स्वर्ग और पानी से 7 समुद्र बन गए, जिनके अपने अपने अध्यक्ष, देवदूत और निवासी थे। अपनी पूर्णता में मनुष्य ईश्वर का प्रतिबिंब है, वह ईश्वर का दर्पण है जो ईश्वर के नामों और गुणों को प्रतिबिंबित करता है। वह प्रकृति का विशिष्ट उदाहरण है, ईश्वर और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है। वह ऐसा लघु जगत है जिसमें परम अपने विभिन्न अंगों को लेकर अपने बारे में सचेत हो जाता है। वह सत्य और दिखावा को जोड़ने वाला सिद्धांत है। वह ऐसी धुरी जिसके आसपास अस्तित्व के वर्तुल चक्कर काटते हैं। वह पहली रची हुई आत्मा है जिसमें ईश्वर अपने सार रूप में खुद को प्रकट करता है। वह मुहम्मद की विशेष आत्मा है और उसका एक नाम है ईश्वर का वचन। पृष्ठ संख्या 78। इस आत्मा के बारे में जीली कहते हैं, मैं वह शिशु हूँ जिसका पिता उसका बेटा है, और ऐसी शराब हूँ जिसका लता उसका पात्र है। मैं उन माताओं से मिला जिन्होंने मुझे गर्भ में रखा था, और मैंने उनसे विवाह के लिए कहा और उन्होंने मुझे उनसे विवाह करने दिया। ये मुहावरे वैदिक मीमांसा से आश्चर्यजनक तरीके से मेल खाते हैं, जहां अदितियों को अपने पुत्रों की माताओं के साथ ही पत्नियां भी कहा जाता है। आत्मा के प्रकटीकरण का पहला रंगमंच था आदम, फिर हुए प्रकाश और अंधकार के देवदूत, और फिर आत्माओं के 5 प्रकार, पशु तीव्र क्रियाशील या अच्छी, पश्चातापी और शांत। सभी आत्माओं में श्रेष्ठ होने की क्षमता है और कुछ को वास्तव में ऐसी है। हर युग में श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं जो मुहम्मद के सार यानी ईश्वर के सिद्धांत के बाहरी प्रकटीकरण हैं। परम मनुष्य में कई चरणों में उतरता है। मनुष्य में रहस्यवादी अवरोह होता है जिसके द्वारा मनुष्य देवत्व में लौटता है। अवरोह या आध्यात्मिक पूर्णता की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में मनुष्य पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा पर स्वयं का संपूर्ण समर्पण कर देता है। दूसरे चरण में वह ईश्वर की नामों पर ध्यान करता है और नाम की उज्ज्वलता से प्रकाशित होता है और व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तीसरे चरण में गुण प्रकाशवान होते हैं, तब मनुष्य दैवीय गुणों में भागीदारी करता है और चमत्कारी शक्ति प्राप्त कर लेता है। उसे घंटियों का स्वर सुनाई देता है, शारीरिक ढांचे को विलय का अनुभव करता है और बिजली और चमक और प्रकाश बरसाते बादल और आग उगलते समुद्र का अनुभव करता है। चौथे चरण में वह नाम और गुण के जगत को पार कर लेता है और सार तत्व के जगत में प्रवेश करता है और श्रेष्ठ यानी दैवीय मानव बन जाता है। जीली एक आदर्शवादी एकेश्वरवादी थे। उनके लिए सभी विश्वास एक सत्य के विचार थे और उपासना के सभी तरीके उस सत्य के किसी पहलू को उजागर करते थे। जो अंतर था वह नामों और गुणों की विभिन्नता में था और सभी को मिलाकर समग्र की श्रेष्ठता बनती थी। जीली हिंदू धर्म से परिचित थे क्योंकि उन्होंने जिन 2 मुख्य संप्रदायों का उल्लेख किया उनमें ब्राह्मा भी था। उनके बारे में वे कहते हैं कि इस संप्रदाय के अनुयायी किसी पैगंबर या प्रवक्ता का उल्लेख किए बिना ईश्वर की पूजा उसके परम रूप में करते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मिना के धर्म ग्रंथ का ज्ञान उन्हें ईश्वर से नहीं बल्कि अब्राहम से हुआ। उनकी 5 पुस्तकें थीं, उनमें से 5वीं अपनी गूढ़ता के कारण बहुत से ब्राह्मणों को अज्ञात थी, किंतु जिन्होंने उसे पढ़ा वे मुस्लिम बन ही गए। स्पष्टतः जीली की पांचवी पुस्तक वेदांत थी, जिसका एकेश्वरवादी दर्शन जीली की दृष्टि में इस्लाम से अलग नहीं था। पृष्ठ संख्या 79। सैद्धांतिक सूफीवाद अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका था। बाद के लेखकों ने मौलिक मूल्यों का ज्यादा उल्लेख किया, लेकिन विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें और लोकप्रिय किताबें लिखी। इनमें फारसी में जामी की कृति लवाएह सूफी दर्शन का श्रेष्ठ सार संक्षेप है, और इसलिए उसे बहुत प्रतिष्ठा मिली, जो अरबी और फारसी कवि सूफीवाद से उत्तरोत्तर ओतप्रोत हुए। उन्होंने दार्शनिकों से ज्यादा उसे ऊंचे और नीचे लोगों का धर्म बना दिया। अरबी कवियों में अबू सईद इब्न अबुल खैर और उमर इब्न अल फरीद, और फारसी कवियों में हकीम सनाई, फरीदुद्दीन अत्तार, जलालुद्दीन रूमी, शबिस्तारी सूफी सिद्धांतों की श्रेष्ठ व्याख्या करती हैं। दार्शनिक और काव्यात्मक के अतिरिक्त उनके समान ही महत्वपूर्ण सूफीवाद का व्यवहारिक पक्ष है। सूफी का व्यवहारिक लक्ष्य है ईश्वर से एकाकार होना। रूढ़िवाद विचारधारा के अनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तीन चरण हैं। पहला चरण है अच्छे कर्मों का ईश्वर के आदेश पर अपनी इच्छाओं का समर्पण और शरीयत के आदेश का पालन। पहले चरण के प्रारंभिक कदम के रूप में जिज्ञासु को अपने पापों के लिए पश्चाताप करना होता है और ईमान हासिल करना होता है। उसके बाद उसे स्वच्छता, प्रार्थना, उपवास, दान और तीर्थ यात्रा से संबंधित सभी अनुदेशों की का बारीकी से पालन करना होता है। तपस्या, उपवास, मौन और एकाकिता से स्वयं की खराब प्रवृत्तियों अर्थात अज्ञान, दंभ, ईर्ष्या, अनुदारता, क्रोध और अन्य समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह पूरी तरह आवश्यक है कि इसके लिए निम्न नफ्स को मरना चाहिए, जिससे उच्च नफ्स ईश्वर में रहे। शरीयत के पालन के आंतरिक या आध्यात्मिक पहलू को तरीकत कहा गया है। दूसरा चरण है मारिफत अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। इस चरण में तार्किकता को त्याग दिया जाता है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने में उसकी अनुपयुक्तता का अनुभव कर लिया गया है। बुद्धि और प्रदर्शन को त्याग दिया जाता है और व्याकुल आत्मा केवल ईश्वर की अनुकंपा में मुक्ति पाती है, क्योंकि ईश्वर की ही कृपा और मेहरबानी से अध्यात्म ज्ञान मिलता है। फिर सूफी को यह पता चलता है कि अन्यता भ्रम है, और इसलिए सृजित चीजों के प्रति और सत्कार्यों के फल के प्रति मोह व्यर्थ है। अबुल हसन खिरकानी के साथ उनका मत है, मैं यह नहीं कहता कि स्वर्ग और नरक का अस्तित्व नहीं है, किंतु मैं यह कहता हूँ कि मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने दोनों को बनाया है और मैं जिस स्थान पर हूँ वहाँ किसी भी सृजित चीज के लिए स्थान नहीं है। आध्यात्मवादी के लिए शरीयत का पालन सापेक्ष रूप से गौड़ है। आंतरिक प्रकाश उसकी बुद्धि और इच्छा को बदल देता है। पृष्ठ संख्या 80। और उसे बाहरी कर्म की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए वीराने और मरुभूमि में भटकने में रहस्यवाद का लक्ष्य काबा ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर के प्रेमी के लिए ईश्वर के काबा की और देखना विधि विरुद्ध है। नहीं, उनका लक्ष्य ऐसी कामना के लिए संताप है जिसमें उनके लिए कोई विश्राम नहीं है, और ऐसे प्रेम में विलीन होना है जिसका कोई अंत नहीं है। जुनैद संकेत करते हैं कि बिना आध्यात्मिक प्रगति के बाहरी तीर्थयात्रा व्यर्थ है, किंतु अध्यात्म पर्याप्त नहीं है, उसे अगले और सर्वोच्च चरण में पहुंचाना चाहिए। दिव्यता में परिपूर्ण से विलय, संपूर्ण मनुष्य इच्छा, बुद्धि और भावनाओं में परिवर्तन और एकाकार होने की स्थिति की प्राप्ति। इस स्थिति में योगी स्वयं से गुजर जाता है और ईश्वर के साथ अनिवार्य रूप से एक हो जाता है। कार्य और कारण का भ्रम अदृश्य हो जाता है और वैयक्तिकता की भावना मर जाती है और शरीयत और धर्म अपना अर्थ खो बैठते हैं। किंतु यह विश्व चेतना का केवल नकारात्मक पहलू है जिसकी विषय वस्तु समृद्ध और सकारात्मक है। पवित्र योगी सत्य के आंतरिक और बाहरी दोनों पहलुओं को एक और अनेक को सत्य और शरीयत को समझता है। एकात्मता की स्थिति में वह ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है और मंसूर के साथ स्वर में स्वर मिलाकर वह चिल्लाता है, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, जिसे मैं प्रेम करता हूँ और जिसे मैं प्रेम करता हूँ वह मैं हूँ। जिन चरणों से होकर एक नैसिखिया ईश्वर के साथ एकाकार होने की स्थिति तक उठता है, उसके कई मुकामात और उसके अनुरूप हाल होते हैं। जो सात मुकाम माने जाते हैं वे हैं तौबा, मरआ, जुहद, फुक्र, सब्र, तवक्कुल और रद। हाल है मुराकबा, कुर्ब, मुहब्बत, खौफ, रिजा, शौक, उन्स, इत्मीनान, मुसहदा और यकीन। ये हाल स्वयं हासिल किए जाते हैं, किंतु हाल ईश्वर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सूफीवाद के सभी साहित्य में सभी चरण और स्थितियां अत्यंत उत्साह और परिपूर्ण तरीके से वर्णित की गई हैं। संतों की गाथाएं कहानियों से भरी पड़ी हैं, जो तापसी, ध्यान और एकाकार स्थिति का विवरण देते हैं और कविता और प्रतीकात्मकता की भाषा उन सभी भावनाओं, भय, आशा, कामना और प्रेम की अभिव्यक्ति से भरी पड़ी है, जिसका अनुभव एक साधु करता है। रहस्यवाद के और धार्मिक अनुभवों की विविधता के विद्यार्थियों के लिए मुस्लिम संतों के जीवन और मुस्लिम रहस्यवाद के काव्य से ज्यादा संपन्न जानकारी का स्रोत कहीं पृष्ठ संख्या 81 नहीं है। गांभीर्य और नशा, शांत पवित्रता और पागलपन की सीमा को छूने वाला जोशीला प्रेम, गहन चिंतन और आश्चर्यजनक तंत्रवाद, छटपटाहट भरी पीड़ा, अत्यंत विनम्रता, आनंदातिरेक और अतिशय आशा, ऐसी कोई मानवीय भावना और चिंतन नहीं है जिसका स्पर्श नहीं किया गया है और जिसके समृद्ध और प्रच्छन्न संगीत को सामने नहीं लाया गया है। सभी प्रकार के दैहिक मनोवैज्ञानिक पक्ष, ध्वनियों और आवाजों का श्रवण और दृश्यों तथा रंगों का दर्शन, ध्वनि का दृश्य से एकाकार होना और रंगों का संगीत से एकाकार होना, फूलों और कस्तूरी की सुगंध और प्रातःकालीन समीर का कोमल स्पर्श, गीत और नृत्य से उत्पन्न समाधि और कविता की एक पंक्ति के उच्चारण से होने वाली मृत्यु, सभी वहाँ पर हैं और उस मनोवैज्ञानिक खाद्य के प्रेमी के लिए अनंत भोज प्रदान करते हैं जो गूढ़ तथ्यों की क्षुधा से पीड़ित हैं। वस्ल फना के मार्ग पर चलने वाले मुस्लिम साधु को हमेशा एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है तो उसका इमाम शैतान है। मार्गदर्शक ऐसी धुरी है जिसके आसपास सूफीवाद का पूरा तंत्र घूमता है। उसकी सत्ता दैवी है, क्योंकि सूफी के लिए पीर के पास शिया इमाम के संपूर्ण महत्व की विरासत है। सूफी जिस सिलसिले का होता है उसका वह अधिपति होता है। सिलसिला संतों का साहचर्य उपलब्ध कराता है जो आध्यात्मिक कल्याण के लिए जरूरी है। शेख सहचरों के आचरण को नियंत्रित करता है और उनकी आध्यात्मिक प्रगति पर नजर रखता है। वह ऐसा संत है जिसने यात्रा पूरी कर ली है और अपने लक्ष्य को पहुंच गया है। वह ईश्वर के साथ एक हो गया है और इसलिए उसकी स्थिति और दर्जा दैवी है। मारूफ करखी ने अपने शिष्य से कहा है कि वह ईश्वर के सामने उसकी शपथ ले, और धूल नून कहता है कि एक सच्चे शिष्य को स्वयं ईश्वर की अपेक्षा अपने स्वामी के प्रति ज्यादा आज्ञाकारी होना चाहिए। जलालुद्दीन रूमी ने अपने स्वामी शम्स ए तबरीज के बारे में कहा है कि वे ऐसे उच्चतम अधिपति थे जो नश्वरता के कपड़े पहने हुए द्वार के पीछे से आए थे। इस प्रकार सूफी एक सार्वजनिक अमूर्तता की उपासना करने का दावा करते हुए एक व्यक्ति को अपनी वास्तविक आराधना का केंद्र बना लेता है। शिष्य को सलाह दी जाती है कि वह अपने मुर्शिद को निरंतर अपने मस्तिष्क में रखे, जिससे वह निरंतर ध्यान और उसके स्मरण के जरिए मानसिक रूप से उसमें खो जाए, जिससे वह उसे सभी लोगों और सभी चीजों में देख सके और मुर्शिद में अपने स्व को समाप्त कर सके। मुर्शिद में स्वयं को खो देने की वह स्थिति से उसका स्वामी कई चरणों से होकर ले जाता है और अंत में आराध्य में समाहित कर देता है। मुहम्मद ने ईश्वर के प्रति समर्पण का उपदेश दिया है। सूफीवाद अपने गुरु को समर्पित करता है, जो पृथ्वी का पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। पृष्ठ संख्या 82। जिज्ञासु का अनुशासन है जिक्र, जिसका साधारणतः मतलब होता है ईश्वर का स्मरण करना और ईश्वर का नाम जपना, किंतु इसमें भक्ति की वे सभी गतिविधियां शामिल रहती हैं जो परमानंद और समाधि को प्रेरित करती हैं। इसके दो प्रकार हैं, जिक्र ए जाली या जोर से जपना और जिक्र खफी यानी मन में जपना। मेलकाम और ब्राउन ने इस प्रक्रिया का विवरण दिया है। ये बहुत कुछ भारतीय योग और प्राणायाम के समान है। सिबली अपनी परिभाषा में सूफीवाद के इस तत्व को खास तौर पर सामने लाते हैं। तसव्वुफ अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना और श्वास पर ध्यान रखना है। नक्शबंदी शाखा में मुरीद यानी शिष्य अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपना मुंह बंद कर लेता है, अपने मुंह के तालू पर अपनी जीभ को दबाता है, अपनी श्वास रोकता है और अपने हृदय में जप करता है। ला ऊपर जाता है, इल्लाहा दाहिने ओर जाता है और ला इल्लाहा का पूरा मुहावरा हृदय के भीतर चला जाता है, उसके जरिए शरीर के सभी तुतुओं में चला जाता है। श्वास नाभि से फेफड़े में खींची जाती है, फेफड़े से आकाश को और फिर इसे क्रमशः चरणों में आगे पीछे दोहराया जाता है। गीत और नृत्य के माध्यम से भी समाधि लगाई जाती है। धर्मशास्त्रियों में इस बात का पर बहुत विवाद है कि संगीत और नृत्य धार्मिक क्रियाओं के रूप में वैध है या नहीं। गजाली इनके बारे में कहते हैं कि ये नवाचार थे जो पैगंबर के प्रारंभिक अनुयायियों से इस्लाम को नहीं मिले थे, किंतु इसलिए इनका निषेध नहीं था। वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है क्योंकि उनके जरिए सूफी ईश्वर के प्रति अधिक प्रेम अपने में जगा पाते हैं और संगीत के जरिए अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान और परमानंद प्राप्त करते हैं। इस स्थिति में उनका हृदय भट्टी की ज्वाला में चांदी के समान स्वच्छ हो जाता है और इस दर्जे की शुद्धता प्राप्त कर लेता है जो सिर्फ बाहरी तपस्या से कभी हासिल नहीं हो सकता। तब सूफी आध्यात्मिक दुनिया से अपने रिश्ते के बारे में इतनी बारीकी से जागरूक हो जाता है कि वह संसार की सभी चेतन खो देता है और अक्सर चेतनाहीन होकर गिर जाता है। हुजवीरी यह बताने के लिए प्रारंभिक सूफियों के मतों और परंपराओं को उद्धृत करते हैं कि संगीत वैध है और यह एक जरूरी कार्य पूरा करता है और पैरों को सहिलाना पाए बाजू कानून और तर्क के दृष्टिकोण से गलत है। वे यह भी कहते हैं कि साधु की स्थिति जब हृदय उत्साह से धड़कता है और हर्षोन्माद सघन हो जाता है और भाव प्रवणता की हलचल प्रकट हो जाती है और रूढ़िवादी रूप लुप्त हो जाते हैं, तो वह हलचल न तो नित्य होता है और न वह पायबाजी होता है और न शारीरिक हरक, बल्कि वह आत्मा का विघटन है। जलालुद्दीन रूमी ने संगीत और नृत्य पर बहुत जोर दिया, इतना कि उनका मौलवी पंथ नृत्य करते दरवेशों के नाम से जाना जाता है। चिश्ती और सुहरावर्दी संप्रदायों ने इसे अपने जिक्र का पृष्ठ संख्या 83 अनिवार्य तत्व मान लिया। शेख बद्रउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि अपनी वृद्धावस्था में जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए तो किसी गीत का स्वर उन्हें इतना उत्तेजित कर देता था कि वे आनंद मग्न हो जाते थे और वे एक नौजवान के समान नृत्य करने लगते थे। जब उनसे यह पूछा जाता कि वे अपनी जीर्णावस्था के बावजूद कैसे नृत्य करने लगे, तो उन्होंने कहा, शेख कहाँ है, ये तो प्रेम है जो नृत्य कर रहा है। सूफीवाद वस्तुतः एक गहन भक्ति का धर्म था, प्रेम उसका आवेग था, कविता गीत और नृत्य उसकी आराधना थे और ईश्वर में विलीन हो जाना उसका आदर्श